राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है कार्तिक मास श्री कृष्ण बलराम मंदिर स्कान बुनाके में। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के नवें अध्याय से दामोदर लीला का दर्शन और वर्णन कर रहे हैं। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूत कृष्ण। और आज हमारी परंपरा में एक महान वैष्णव आचार्य का तिरुभाव तिथि भी है। भगवद गीता में जहां प्रभुपाद जी ने हमारी परंपरा का कृष्ण ब्रह्मा व्यास से वर्णन किया है, रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी और उसके बाद लिखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उसके बाद है नरोत्तम दास ठाकुर। आज नरोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव तिथि है। जब भी किसी वैष्णव आचार्य का तिरुभाव तिथि होता है तो जो हम भजन गाते हैं वो नरोत्तम दास ठाकुर का ही जे आनी लो प्रेम धन जो गाते हैं ये नरोत्तम दास ठाकुर का ही गाया हुआ है। तो थोड़ी देर के लिए चर्चा नरोत्तम दास ठाकुर की जीवनी के ऊपर भी करेंगे और दामोदर लीला और दामोदर अष्टक जो चलता है इसी को आगे चलाने का प्रयास करेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर हमारी परंपरा के मुख्य आचार्य हैं। यह आश्चर्य देखने को मिलेगा कि वो एक ही शिष्य थे लोकनाथ गोस्वामी के। लोकनाथ गोस्वामी के एक ही शिष्य नरोत्तम दास, लेकिन परंपरा में लोकनाथ गोस्वामी का नाम नहीं है, कविराज गोस्वामी और नरोत्तम दास ऐसे लिखा है। विशेषता नरोत्तम गोस्वामी की यह है कि उनके जन्म से पहले चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ और भक्तों के साथ पुरी से निकलकर वृंदावन जाने का निर्णय लिया था, लेकिन गए कहां चले, राम के लिए। रूपा और सनातन गोस्वामी को दर्शन देने के लिए रास्ते में एक नदी पड़ी, उसका नाम है पद्मा नदी। उसके तट के ऊपर महाप्रभु चेतना को ऐसा प्रेम का आवेश हुआ कि आगे पीछे घूम रहे हैं और आंखों से अश्रु बह रहे हैं और नरोत्तम 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 ऐसे बोल रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु जानते हैं, महाप्रभु हमेशा कई बार ऐसे नाम ले चुके हैं, लेकिन आज महाप्रभु का भाव संभाल में नहीं आ रहा है। नित्यन प्रभु उनको कहते हैं, क्या बात है महाप्रभु? बोला, एक महान भक्त आने वाला है जो मेरे कीर्तन की परंपरा को चालू रखेगा। नरोत्तम का मतलब मानव में उत्तम, नर मतलब इंसान, नर में उत्तम, और मैं जो कृष्ण प्रेम है वो इस पद्मा नदी के पास धरोवर रख के जाता हूं, और आप नित्यानंद प्रभु उसको बताना, प्रेरणा देना कि वो इस नदी में नहाए और ये प्रेम पद्मा नदी से अपना प्राप्त करे। और सुबह नहाने के लिए जैसे ही नदी के अंदर सब भक्त गए, महाप्रभु ने जैसे नदी में प्रवेश किया, नदी का पानी किनारों के ऊपर आने लगा। बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसे तो कुछ हुआ नहीं, बाढ़ की तरह पानी ऐसे आनंद में मगन हो गई। तो प्रेम पद्मा नदी को देखा तो ये तो महाप्रभु प्रेम मेरे पास रख रहे हैं, लेकिन मैं प्रेम को संभालूं कैसे, क्या करूं? तो कहते हैं नदी पद्मा नदी अपने स्वरूप में आके प्रणाम किया, महाप्रभु ये प्रेम आप यहाँ रख रहे हैं क्या करना है? बोला नरोत्तम आएगा उसको देना है। मैं कैसे पहचानूंगी कि ये नरोत्तम है? बोला जब भी कोई व्यक्ति आपके अंदर नाहे अंदर जाए और आपके अंदर ऐसे ही आनंद उपजे जैसे अभी हुआ है तो उसको समझ लेना नरोत्तम है। और लोकनाथ गोस्वामी को महाप्रभु ने वृंदावन में सबसे पहले गोस्वामी लोकनाथ को भूगर्भ गोस्वामी के साथ भेजा था, जिन्होंने सात जो मंदिर है गौड़िया वैष्णो के वृंदावन में उनमें से एक मंदिर लोकनाथ गोस्वामी का स्थापित किया, राधा गोकुलानंद उनका स्थापित किया हुआ मंदिर है। राधा विनोद उनके ठाकुर जी थे। उनको महाप्रभु ने कहा था कि मेरा एक परम भक्त आएगा और उसको आप अपना शिष्य बनाना। तो ये दो भविष्यवाणी उनके जन्म से पहले चेतन महाप्रभु ने की थी। नरोत्तम दास का जन्म एक राजा कृष्णानंद राजा के घर में हुआ, वो राजा का पुत्र था। और महाराज कृष्णानंद खेतुरी ग्राम गांव का नाम है खेतुरी, जो अभी बांग्लादेश में है। और कायस्थ थे, ये कायस्थ जाति से ब्राह्मण नहीं थे, कायस्थ थे लेकिन बहुत बड़ा धनी परिवार था। बालक अकेला बेटा का जन्म हुआ, बड़ा आनंद से पला पोषा। लेकिन 6 महीने में जब पहले अन्न खिलाने का संस्कार करते हैं ना भोजन का, तो खीर रखा तो नहीं खाया, मुंह दूसरे तरफ मुंह फेर दिया छोटे से बालक ने, ये बात है कुछ खा नहीं रहा है। और थोड़ी देर के बाद कोई वैष्णव वही चीज लाया और उसको लेके प्रेम से खाने लगा, तो बड़ा आश्चर्य हुआ ये क्यों। मतलब वो पहले वाला भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया हुआ नहीं था और ये प्रसाद वैष्णव लाया है इसको ग्रहण किया। तो ये भक्त जन्म से ही भक्त था, ये बोले नित्य सिद्ध जैसे होते हैं, केवल भगवान का अर्पण किया हुआ प्रसाद ही ग्रहण करना उनके जीवन का लक्ष्य था। जब टीन एज में पहुंचा तो नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में आए कि जाओ जाओ पद्मा नदी में नहाओ, महाप्रभु ने आपके लिए प्रेम धरोवर रखा है। सुबह उठते ही पद्मा नदी में नहाने गया, जैसे ही नहाने गया उसका जीवन बदल गया। गौरंग महाप्रभु ने आलिंगन किया और उनका रंग सांवला था, गौरा हो गया और प्रेम में उन्मत्त होके उधरी नदी के किनारे आनंद में मगन होके गौरंगा महाप्रभु गौरंगा राधे कृष्ण ऐसे गाने लगा, शाम तक घर नहीं आया। माता पिता को चिंता हुई, बहुत से लोगों को भेजा तो देखा नदी के किनारे नारू बैठा है, घर में नारू बोलते थे नरोत्तम को, नारू यहां क्या कर रहा है? आंखों से आंसू बह रहे हैं, वापस से रंग भी बदल गया, भाव भी बदल गए, ऐसे लगता है जैसे प्रेमी होता है। मां ने पूछा बेटा तुम रो क्यों रहे हो? बोला मां मैं नहाने गया था, वहां गोरे रंग का एक दिव्य पुरुष ने मुझे आलिंगन किया, अब उसकी जुदाई में मेरे को रोना आ रहा है और मैं उससे मिलना चाहता हूं। मां ने बोला मैं क्या करूं आपके लिए बेटा? बोला मेरे को मुक्त करो, मैं उसको ढूंढूं कि वो कहां है। माता पिता को चिंता होने लगी कि ये तो अभी बच्चा 15-16 साल का है और ये घर में रहने को तैयार नहीं है। वो विवाह के लिए सोचने लगे लेकिन बेटे के ऊपर तो ऐसे चौकीदारी लगाई कि प्रेम के कारण अपने बेटे को अपने घर में बंदी बना दिया, हाँ प्रिजनर बना दिया, चारों ओर से चौकीदारी लगा दी। लेकिन नरोत्तम दास का जो भक्ति का भाव था वो इस छोटी बचपन में चारों ओर से लोगों को पता लग गया। तो एक बहुत बड़ा वहां का जागीरदार मुस्लिम था, उसने नरोत्तम दास को देखने की इच्छा जाहिर की, उनके पिताजी के पास संदेश भेजा। पिताजी अभी पॉलिटिकल आदमी को नाम भी नहीं कर सकते हैं और वहां जाएगा तो वापस आएगा कि वहां से भाग के जाएगा, ये भी शंका होने लगी। लेकिन जागीरदार के पास नरोत्तम को भेजा गया। वहां तो जो उनके साथ गए थे रक्षक वो अलग हुए, वो अंदर जाते हुए सोचा आज भागना है तो मौका है, फिर भागने का मौका नहीं मिलेगा। नरोत्तम वहां से जंगल में घुस गया। राजा का बेटा कभी पैदल चला नहीं, घर से बाहर गया नहीं, चलने से पांव में फफूंदे हो गए, खाया कुछ नहीं, मूर्छ जैसा तीसरे दिन गिर पड़ा। और गिरा तो गोरे रंग का ब्राह्मण हाथ में दूध लेकर आया और कहा बेटा ये दूध ले लो। ये तो इतना थका हुआ था, ऐसे गिरा तो सोपन में। रूप सनातन गोस्वामी कहते हैं, भाग्यशाली हो, महाप्रभु स्वयं आपके लिए दूध का लोटा लाए हैं, पियो, अब तुम्हारा दुख दूर हो गया, जल्दी वृंदावन पहुंचो। और नित्यानंद प्रभु ने उनको आदेश दिया कि आप वृंदावन जाइए। उस दूध पीने के बाद में भगवान ने ऐसी शक्ति दी कि वो वृंदावन आकर पहुंचे। वृंदावन में लोकनाथ गोस्वामी शिष्य बनाने को तैयार नहीं थे, उनकी ऐसी सेवा की, उन्होंने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, जीव गोस्वामी के पास शिक्षा ग्रहण की, उनको दूध दिया गया महाप्रभु ने। उनकी असली कृष्ण लीला में वो मंजरी है जिनका काम है दूध गर्म करके राधा रानी और गोपियों को देना। तो स्वयं नरोत्तम दास भगवान श्री कृष्ण की लीला में दूध गर्म करके राधा रानी आदि को देते हैं। आज स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव में उससे रेसिप्रोकेट करने के लिए, उसी को दूध देने के लिए आए। और उनकी एक लीला में ऐसे है कि हाथ जला हुआ देखा जीवा गोस्वामी ने नरोत्तम दास का एक दिन, ये नरोत्तम हाथ कैसे जल गया, तो बड़ी शंका हो रही थी, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से मैं दूध गर्म कर रहा था राधा रानी को अर्पण करने के लिए, मैं समझा शायद गर्म है, मैंने हाथ लगाया तो हाथ जल गया, दूध नहीं था, सिर्फ मानसिक सेवा में हाथ जला हुआ था। जीवा गोस्वामी को बड़ा आनंद आया कि अपनी निज सेवा जो मंजरी सेवा है उसमें लगा हुआ है। अब जीवा गोस्वामी ने आदेश दिया तीन महात्माओं को, महाप्रभु और छह गोस्वामियों के बाद तीन वैष्णव आचार्य हुए हैं जिन्होंने इस परंपरा को आगे चलाया, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित। इन तीनों को सारा गौड़िया वैष्णव लिटरेचर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके लिखे हुए सारे ग्रंथ जो छपते नहीं थे, हाथ से लिखते थे, सब बैलगाड़ियों में रखा, और बैलगाड़ियां के साथ कुछ अस्त्र शस्त्र वाले लोग रक्षा के लिए, वो ये पहली संकीर्तन पार्टी प्रचार करने के लिए राधा दामोदर मंदिर वृंदावन से निकली। और अब ये वही शिक्षाएं जाकर बंगाल में और ओडिशा में प्रचार करेंगे। बंगाल के बॉर्डर के ऊपर विष्णुपुर गांव है, वहां महाराज एक राजा हमीर रहते थे, उसके पास एक ज्योतिषी था, वो उसको बताता था कि ये आदमी जो आ रहा है इसके पास कितना धन है, उसको लूटना चाहिए। आज इसने कहा कि बहुत बड़ा धन लेके जा रहे हैं ये लोग। रात को वो सो गए और वो पेटियों के अंदर, जो लकड़ी की पेटियों में पुस्तक है, वो रात को चुरा के ले गए। सुबह उठते ही देखा तो उन्होंने कहा इतना सारा धन हमारा, सारा वैष्णव लिटरेचर हमारे गोस्वामी का हमारे हाथों से चला गया, अब तो जीते रहना भी, जीना जी के क्या करेंगे, जीवन ही समाप्त कर देना चाहिए। श्रीनिवास आचार्य उनका लीडर था, उन्होंने कहा मैं यहां रुकता हूं, इस को ढूंढ के निकालूंगा, आप अपने प्रचार के कार्य को जारी रखें। तो श्यामानंद जी चले गए ओडिशा में और नरोत्तम दास खेतुरी गांव में, अपने गांव की तरफ चले गए। श्रीनिवास आचार्य वहां रहे, इधर उधर पता किया कि राजा भागवत सुनता है। एक दिन राजा की भागवत में बैठे तो जो भागवत कथा कर रहा है वो तो कथाकार है, तो नरोत्तम तो अपना आचार्य श्रीनिवास ने उठ के कहा कि भागवत का तो श्रवण करने वाले की आंखों से आंसू बहते हैं और हृदय पिघल जाता है, तो बोला आप करो कथा। जैसे ही श्रीनिवास आचार्य ने कथा की, सब लोगों का हृदय बदल गया, महाराज चरणों में गिरे, मैं आपकी कैसे सेवा करूं। बोला सेवा करनी है तो हम यहां से पुस्तक लेके जा रहे थे हमारे आचार्यों के, चोरी आपके राज में कहीं हुए हैं, आप उसको ढूंढ के निकाल के दीजिए। अब तो राजा कहता है वो तो हमने ही चोरी किया, और ज्योतिषी को राजा कहता है कि तुमने कहा धन है और ये बड़ा, देखो मेरा ज्योतिष कहता है सबसे बड़ा धन है, और इससे बड़ा धन क्या है कि आज हम बैठ के यहां इतने बड़े लाखों के मंदिर बना के उन्हीं की कथा कर रहे हैं, तो उनका तो ये धन पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है। तो ये और वो राजा फिर श्रीनिवास का शिष्य बन गया नरोत्तम दास। एक श्रीनिवास आचार्य का शिष्य था रामचंद्र कविराज, ब्राह्मण था, और नरोत्तम दास का एक शिष्य था गंगा नारायण चक्रवर्ती, ये दोनों ब्राह्मण थे। एक दिन कुछ जमींदार का लड़का भैंस और बकरी लेके जा रहा था तो नरोत्तम दास ठाकुर ने देखा और उनके साथ रामचंद्र कविराज थे। चलते हुए आपस में कहते हैं, ये पशु की हत्या करने वालों को क्या होता है? बोला, वो तो पशु दूसरे जन्म में जिसको मारते हैं वो दूसरे जन्म में उसको मारता है, तो पशु की हत्या करने वाला बड़ा पापी होता है। तो बच्चों ने सुन लिया, बच्चों ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? बोला, ये आप कहां ले जा रहे हैं ये भैंस बकरियां? बोला, ये तो हम इनका तो मारेंगे। और बोलो, मारो। बोलो, तो फिर तो पाप लगेगा। ऐसा उनको प्रचार किया, दोनों शिष्य हो गए और बकरियां और भैंसें छोड़ दी। उनके पिताजी को जब ये पता लगा तो बोला, हमारे बच्चे ब्राह्मण कुल के, वो एक कायस्थ, वो इसको उसके शिष्य बन के आ गए। अब तो बहुत बड़ा बबाल मच गया, बहुत बड़ा वो उधम मच गया। राजा नरसिंह के पास गए, महाराज नरसिंह देव, ये एक कायस्थ है, देखो धर्म को इतना बिगाड़ रहा है, ब्राह्मणों को शिष्य बना रहा है। राजा ने चिट्ठी लिखी, नरोत्तम दास ठाकुर ने उनको चिट्ठी में जवाब दिया बहुत निम्रता से। राजा तो संतुष्ट हुआ, लेकिन ब्राह्मण रूपनारायण को लेकर साथ के और कहे कि हम जाएंगे उसको हराएंगे, कहां है नरोत्तम दास देखते हैं। जैसे गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामचंद्र कविराज को पता लगा कि बहुत बड़े दिग्विजयी ब्राह्मण नरोत्तम दास से बात करने के लिए आ रहे हैं, इन्होंने कहा, नरोत्तम दास वैष्णव है, बात करेगा नहीं, हमको कुछ करना चाहिए। एक गांव में देखा कि इस गांव में ये जरूर रात को रुकेंगे रास्ते में। एक ने बर्तन का दुकान, मिट्टी के बर्तन का दुकान बनाया। बोला, रात को रुकेंगे तो भोजन बनाएंगे, जो भोजन बनाएंगे तो मिट्टी का बर्तन में बनाएंगे, तो मिट्टी का बर्तन जरूर लेंगे। और भोजन के बाद दूसरे ने जो है पान का दुकान खोला। बोला, भोजन के बाद पान जरूर लेंगे। तो दोनों ने दुकान खोल के रखा। जैसे वो आए उधर और सामान के लिए आए, बात करने, ये संस्कृत में बात करने लगे। अरे, ये दुकानदार वो भी बर्तन बेचने वाला नीच और पान का दुकानदार और संस्कृत बोलता है। वो ऐसी संस्कृत बोलने लगे कि जो पूछे सबको हरा दिया। बड़े पंडित आ गए, उनके गुरुजी, सबको हरा दिया। बोला, तुम लोग को ये कहां से सीखे हो? बोला, हम नरोत्तम दास के शिष्य हैं। अब आपस में देखते हैं और राजा साथ में कहते, नरोत्तम के शिष्य तुम हार गए, अब नरोत्तम के पास कैसे जाओगे? वो लोग वहां से ही वापस चले गए। फिर नरोत्तम दास ठाकुर की एक और बहुत बड़ी देन इस दुनिया को है, उन्होंने पहली बार चैतन्य महाप्रभु का गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाया। पहली बार महाप्रभु के बाद जाने के बाद गौर पूर्णिमा का उत्सव, जो अभी हम हर साल मनाते हैं मार्च में होली के दिन के ऊपर, ये पहली बार नरोत्तम दास ठाकुर ने इस उत्सव का प्रबंध किया। सारे वैष्णव के को चिट्ठियां लिख के बुलाया। 2 महीने पहले राजा का बेटा था, बहुत बड़ी व्यवस्था की सबको रहने की खाने की। जाह्नवा माता और उसका बेटा वीरभद्र ये उस स्थान के ऊपर आए और वहां ऐसा कीर्तन नरोत्तम दास ने किया, ऐसा कीर्तन किया कि साक्षात पंच तत्व वहां प्रकट हुए और जो लोग वहां थे निज भगवान के परिकर भक्त, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, जबकि चैतन्य महाप्रभु पहले ही लीला समाप्त करके जा चुके थे। वो नरोत्तम दास का रोजशाही कीर्तन, ये राजशाही डिस्ट्रिक्ट में रहते थे जो बांग्लादेश में है, तो ये कीर्तन बहुत बड़ा प्रसिद्ध कीर्तन, नरोत्तम दास कीर्तन, महाप्रभु के कीर्तन की परंपरा के आचार्य हैं। तो ये एक विशेषता, उनकी सब वैष्णव को बहुत बड़ा मान सम्मान दिया। और उधर वीरभद्र ने बहुत बड़ा प्रवचन किया था कि ब्राह्मण और वैश्य और शूद्र और क्षत्रिय ये जाति से नहीं होते हैं। ये जो बहुत बड़ा विवाद चल रहा था उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रवचन किया। और नरोत्तम दास फिर भी अंतिम समय में जब समाधि में जाके बैठे, उनके अंतिम, क्योंकि आज तिरुभाव तिथि है, तो उनके अंतिम समय के 2 घटनाएं हैं। एक तो ये है कि वो जब समाधि में बैठे तो वो ब्राह्मण आने लगे कि ये देखो ब्राह्मणों को शिष्य बनाता था, अब देखो मर रहा है ना। तो गंगानारायण चक्रवर्ती ने प्रार्थना की कि गुरुदेव इन विचारों के ऊपर दया करो, कृपा करो, ये अपराध कर रहे हैं। तो उसी वक्त उनके शरीर से चमक, बहुत चमकने लगा और शरीर के ऊपर वो ये जनेऊ जो है ब्राह्मण त्रेड ये अपने आप प्रकट हुआ। तो सब ब्राह्मणों ने प्रणाम किया। और दूसरी जगह ऐसे लिखा है कि स्वयं ने कहा कि मेरा अग्नि संस्कार के लिए लकड़ी तैयार करो, मैं जाऊंगा। जब लकड़ियों के ऊपर रखा गया तो सब फिर ब्राह्मण आगे कहने लगे, देखो आप लकड़ी के ऊपर जलने जा रहा है, किए ने अपराध। तब फिर गंगा नारायण ने प्रार्थना की तो उठ के वहां नरोत्तम दास बैठ गए और उनसे प्रकाश सबने देखा। और दूसरे विभाग में कहते हैं अपने शिष्यों को लेकर गंगा में स्नान करने के लिए गए और कहा कि अब मेरे को ऊपर गंगा जल डालो। जैसे ही गंगा जल डालने लगे उनका सारा शरीर दूध की तरह गंगा जल में मिलने लगा। अब शिष्य कहते हैं पानी डालना बंद करेंगे तो शरीर बचेगा, लेकिन आदेश है गुरु जी का, आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथों से पानी डाल रहे थे। फिर गंगा नारायण चक्रवर्ती ने वहां से उस दूध का एक लोटा भरा, उस दूध की दुग्ध समाधि अभी भी उसने अपने घर के पास बनाई है। जब जाते हैं बांग्लादेश में तो दूध समाधि का दर्शन होता है। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर का एक संक्षिप्त चरित्र है। जो उनका विशेष देन प्रार्थना नाम का पुस्तक है जिसके अंदर 258 से ज्यादा वर्सेस हैं, 17 या 30 एक भजन है जिसके अंदर पूरा गौड़िया वैष्णव सिद्धांत स्थापित किया है। तो वो भजन प्राय बहुत प्रेम से प्रभुपाद जी बहुत से भजन गाया करते थे नरोत्तम दास ठाकुर के, वो शास्त्र के बराबर है। तो आज ऐसे महान वैष्णव का तिरुभाव तिथि है, हमको उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि शुद्ध भक्ति गौरंगा महाप्रभु की कृपा से दामोदर मास में हमारा मन भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में लगे और शुद्ध भक्ति और प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न हो, ऐसी प्रार्थना नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में करनी चाहिए। महाश्री नरोत्तम दास ठाकुर की गौर प्रेमानंदे। अब आइए गोकुल चलते हैं। गोकुल में गोकुल, वृंदावन और नंदगांव, ये तीन स्थान हैं जिस जहां नंद बाबा ने 11-12 साल तक तीन जगहों के ऊपर रहे। पहले 3 साल 4 महीने कृष्ण नंद बाबा के साथ गोकुल में रहे और इस लीला के तुरंत बाद 2-3 महीने में दामोदर लीला के बाद गोकुल को छोड़ा और वृंदावन में आकर रहे और 3 साल 3.5 साल वहां रहे और फिर नंदगांव में जाकर रहे। और नंदगांव में कृष्ण 11 साल की आयु कब हुआ होगा मुश्किल से, तब नंदगांव से अक्रूर लेके गए, फिर कृष्ण मथुरा चले गए। तो ये जो लीला है बाल लीला श्री कृष्ण की, ये गोकुल की है। और ये गोकुल की लास्ट बट वन लीला है, ये समझ लीजिए। इसके बाद एक ही छोटी सी लीला का वर्णन है जहां फल बेचने वाली आती है और कृष्ण थोड़े से दाने अन्न के हाथ में ले जाते हैं और फल लेने के बदले में उसको हीरा मोती दे देते हैं, ये लीला है। फिर गोकुल को छोड़ के भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के साथ और ग्वाल बाल सब वहां से क्षतिग्रा में आके रहे जो वृंदावन के पास है। वहां सब छकड़े खड़े कर दिए इसलिए उसका नाम क्षतिग्रा हो गया, छकड़े मतलब बेड़ गाड़ियां। तो वहां रुके और ये सारा ब्रज मंडल गोवर्धन इस क्षेत्र में रहे। तो गोकुल में अभी भी अगर हम कभी भाग्य से दर्शन करने जाएंगे तो ऊपर नंद बाबा का महल है, उसको 84 खंभे का महल कहते हैं, 84 खंभे हैं। और वहां से नीचे उतर के आएंगे तो बीच में रोड पड़ता है और रोड के दूसरे तरफ जमुना जी है। तो उस रोड के दूसरे तरफ उखल बंधन लीला का स्थान है, वहां कुछ महात्मा रहते हैं और वो जो पत्थर का बना हुआ मसाला कूटने का उखल था या अन्न कूटने का उखल था उसका वो टुकड़ा वहां रखा है जिसमें बंधा, और वहां ये दामोदर अष्टक दीवार पे लिखा हुआ है। तो ये पूरा क्षेत्र गौशाला और ये पूरा नंद भवन कहलाता था। तो गोकुल में चलते हैं। दिवाली के दिन सुबह सवेल का टाइम है, 5 बजे का टाइम है और स्वयं यशोदा दही का मंथन कर रही थी, बाकी दासियों को दूसरे काम में लगा दिया था और कृष्ण के गीत गा रही थी। कन्हैया नींद से उठ के आया, मां की मंथनी को पकड़ के और दूध पीने के लिए अंक में चढ़ गया, गोद में चढ़ गया और मां ने दूध पिलाया। अभी दूध पी ही रहा था और माँ भी देख के आनंद ले रही थी, चूल्हे के ऊपर चढ़े हुए दूध के उफान को उतारने के लिए यशोदा माँ कृष्ण को नीचे छोड़कर और दूध को उतारने चली गई और कृष्ण को क्रोध आया। तो ये क्रोध कृष्ण का यहां लिखा है, जूठे आंसू बहाए और क्रोध में आकर पत्थर उठाया। ये क्रोध है कि प्रेम है? ये मैया से प्रेम है, वो नहीं चाहता है कि मैया और कहीं जाए, मैया मुझे गोद में रखे। ये क्रोध नहीं है, ये प्रेम है। ये बहुत बड़ा मुश्किल से समझ में आएगा। ये दूध को उतारने गई है, नहीं नहीं मेरे को छोड़ के क्यों गई है? मैं मैया की गोद में रहना होना चाहिए मेरे को, मुझे मैया चाहिए, ये मैया से मुझे प्रेम है। इस प्रेम के कारण ये क्रोध भी प्रेम का एक दूसरा रूप है। और ये अद्भुत प्रेम ऐसा मां के लिए था, लेकिन अब मां मुझे छोड़ के जाती है ना, मैं दिखाता हूं। वो एक पत्थर उठाया और मटके को कैसे फोड़ा है, बड़े होशियारी से मटके को फोड़ा है। चोरी का काम करे तो भी होशियारी से करना चाहिए, भगवान ही कर रहा है ना, कच्चा काम थोड़ी कर रहा है। मां ने देखा कि मटका वैसे का वैसा पड़ा, लेकिन रही तब बह गया। और देखिए तो नीचे बहुत एक फर्स्ट क्लास होल बनाया है, गोल होल बना दिया है। क्या जबरदस्त मटका फोड़ने का भी कला आ गई इसको। मां को बड़ी हंसी आ गई, मटका फूटा देखा मां को हंसी आई, मां को क्रोध नहीं आया। हंसी इसलिए आई कि देखो मेरी मूर्खता, 2 किलो दूध बचाने के लिए गई और 10 किलो दही बह गई, थोड़ा बचाया और ज्यादा गया। और किसने किया? सस्वतम, मेरे अपने बेटे का काम है, कर्मचा मेरे बेटे का काम है। ये तो अच्छा बेटा मेरे घर में आया, लोगों के बेटे घर की रक्षा करते हैं, ये घर के बर्तन फोड़ता है। तो मां अभी हंस रही है और मां के हृदय में बहुत बड़ा स्नेह प्रेम आया कि ये इतना बड़ा शराब तो किया है, गया कहां, यहां तो दिख नहीं रहा है। तो मां को चिंता हुई, कहां गया? तो लिखा है अंतर्गत, अंदर गया। एक इसका अर्थ है अंदर चला गया, इसका मतलब क्या है? मां दही कहां मंथन कर रही थी, बड़ा परिश्रम का काम है, कमरे के अंदर नहीं किया जाता है, बाहर आंगन में होता है दही मंथन, खुली हवा में, क्योंकि मेहनत का काम है इसमें, अंदर बैठने में बहुत पसीना होता है। आंगन में बाहर दही, हमने अपने माताजी को देखा है घरों में मतते हुए, बाहर आंगन में खुले में बैठ के सुबह सवेले बनती है, ठंडी 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 हवा आती है, पसीना होता है। लिखा है कि स्वनम कबर, बहुत बड़े काले बालों से मां का पसीना बरसात की तरह बह रहा था। तो बड़ी मेहनत का काम है, तो बाहर खुले में बैठे थे और वहां से भाग के अंदर चले गए। तो अंतर्गत, इसके 3 अर्थ लिखे। अंतर्गत का मतलब अंदर कमरे में चले गए, ये तो ठीक है, और अंतर्गत का ये अर्थ है कि मां से अंतर अलग हो गए। मां ने, मां दूध चाहिए मां को, मैं मां से अलग हूं, मां मुझे छोड़ती है, मैं मां को छोड़ता हूं, इसको भी अंतर बोलते हैं। दोनों में अंतर हो गया, मतलब अलगाव हो गया, सेपरेशन हो गया। और तीसरा अंतर्गत का मतलब है, अंतर का मतलब बड़े आनंद से बैठ के मक्खन खा रहे हैं। अंदर जाके क्या कर रहे हैं? बड़े आनंद से बैठ के मक्खन खा रहे हैं। तो अंदर चले गए, मां से अलग हो गए और अंदर बैठ के प्रेम से मक्खन खा रहे। और मां ने जैसे ढूंढा, चरणों को देखा, वहां तक पहुंची, तो कहां देखा, दर्शन कैसे किया? ये दर्शन दामोदर अष्टम का दर्शन है। उखल के ऊपर बैठा है, उखल कैसा है, उल्टा करके उखल के ऊपर बैठा है। और माता के हाथ में क्या है? लाठी। माता ने वहां हाथ में लाठी उठाई हुई है। दूध के मटके फूटने का मां को दुख नहीं, मक्खन चुराने का दुख नहीं, लेकिन ये उखल के साथ संग किया है ना, खल के साथ, ये मां को अच्छा नहीं लग रहा, खल का संग किया है। तो और बैठा है, मक्खन बंदरों को बांट रहा है, लेकिन आंखों से बड़ी चंचलता से इधर उधर देख रहा है कि मैया आती जरूर हो गई, क्योंकि इतना भी समझता है कि मैंने अपराध किया है, कृतागसम, यह भी जानता है कि मैंने काम जो है वो दंड खाने का किया है, मुझे दंड जरूर मिलेगा, मां आएगी मारेगी, जरा सावधानी से ऐसे देख रहा है। और मां को आते देखा और उखल से कूद के भागा, और भागते हुए कृष्ण का दर्शन सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं कि कृष्ण उखल से कूद के भागा, और कहां भागा, कमरे से बाहर भागा, आंगन में आ गया। तो मां उसके पीछे भागने लगी, अब मां भगवान के पीछे भाग रही है, इसका दर्शन एक बहुत सुंदर अपना चित्र बनाया था प्रभुपाद जी ने। मां के हाथ में लाठी है, मां पीछे भाग रही है, आगे कन्हैया भाग रहा है। ये बहुत सुंदर भगवान का ध्यान है कि भगवान के पीछे भागना चाहिए। परिश्रम करके ऐसे मुफ्त में बैठे बैठे को नहीं मिलेगा, कुछ भागना पड़ेगा। घर से भाग के मंदिर तक आओगे तो कथा सुनने को मिलेगी। तो यहां भी भाग के यहां तक आने का प्रयास करना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। थोड़ा देर से आओगे तो प्रसाद मिलेगा, पहले आओगे तो कथा मिलेगी। लेकिन दोनों ही भगवान का कृपा है, दोनों में से जो भी मिल जाए वो भाग्य से मिलता है। और कथा और प्रसाद दोनों मिल जाए तो डबल फायदा है। तो मां भाग रही है, और इसके ऊपर भी सुखदेव गोस्वामी ने लिखा कि बच्चा है उसको भागने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन मां को भागने में परेशानी हो रही है। मां का शरीर भारी है, मां भागने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मां को पसीना हो रहा है, मां के यशोदा के फूल जूड़े से नीचे गिर रहे हैं, लेकिन मां ने फिर भी जाके कृष्ण को पकड़ लिया। और यहां सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, जिसको योगी नहीं पकड़ सकते हैं उसको गोपी ने पकड़ लिया। किसने पकड़ा? बोला गोपी ने पकड़ा, किसी बहुत बड़े योगी ने नहीं पकड़ा, किसी बहुत बड़े वैरागी सन्यासी त्यागी ने नहीं पकड़ा, एक गांव की ग्वालन गोपी ने पकड़ लिया। साधारण रूप से गोपी ने पकड़ लिया। भाई कोई साधु महात्मा को तो कभी हाथ आते नहीं, जो योगियों को हाथ नहीं आते हैं वो प्रेम भक्ति माँ यशोदा की से पकड़े गए। और जब पकड़े गए तो दूसरे श्लोक में रोना शुरू किया, आंखों को मलना शुरू किया, और आंखें कैसी है? शतांक नेत्रम, भयभीत आंखें हैं। शतांक नेत्र का मतलब बहुत भयभीत आंखें, ऐसे मां की लाठ क्यों दिखे। और मां ने क्या कहा उसको पकड़ते ही? क्या बोला? मटका फोड़ा, चोरी किया, मक्खन बंदरों को खिलाया, नहीं छोड़ूंगी। बोलते मारो मत, अभी नहीं करूंगा, मारो मत, अभी नहीं करूंगा, लाठी फेंक दो, लाठी फेंक दो, डर लग रहा है, वो ऐसे रोते हुए कह रहे हैं। और ये देखते मैया के हृदय में एकदम प्रेम उमड़ आया कि मेरे बेटे को भय लग रहा है, डर लगता है लाठी से। मां ने देखा कि लाठी से इसको भय लगता है, लाठी को फेंक दिया। इसका इससे क्या दिखने को मिलता है कि मां कोई बच्चे को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन सुधारना चाहती थी कि ये गलत काम किया है तो इसको पता लगे कि गलत काम क्यों किया। तो लाठी को फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, अर्भक वत्सला, बच्चों से बहुत प्रेम करने वाली यशोदा है। जब गांव के बच्चों से इतना प्रेम करती है तो अपने बच्चे से थोड़ी कोई दुश्मनी कर रही। यशोदा तो जब कृष्ण पैदा ही नहीं हुआ था, किसी और का बच्चा रास्ते में देखती थी, लाती थी, खिलाती थी, श्रृंगार करती थी। कोई माता जी बच्चे को ठीक कपड़े नहीं पहनाती थी, उसको जाके बोलती थी नंदरानी, अरे अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनाती है धुला के। बच्चे बच्चे से प्रेम करती थी यशोदा। अर्भक वत्सला, अर्भक मतलब बच्चा, वत्सल किसको कहते हैं? शब्द वत्स जो जहां से निकला है वो निकला है गाय से। गाय जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो बच्चा जराजू होता है, वो जर के अंदर, मतलब वो माता के जराजू में एक तो मानव आता है दो पांव वाला, एक चार पांव वाला पशु, ये पैदा होते हैं। तो जरा जरा के साथ वो थैली के साथ पैदा होते हैं। तो जराजू ये है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो गाय के उस बच्चे को खून भी लगा होता है, पीप भी लगी होती है गाय का अपना, पेशाब भी लगा होता है, गोबर भी लगा होता है, लेकिन उसको गाय चाटती है, चाट के सारा साफ करती है। और जो गायों को पालते हैं उनको मालूम है गाय के चारे के अंदर गाय का अपना यूरिन भी लग जाए गाय नहीं खाएगी, गाय के अपने खाने में अपना ही यूरिन लग जाए नहीं खाएगी, लेकिन अपने बच्चे को चाटती है। इससे वत्सला, गाय को कहते हैं वत्सला, अपने वत्स बच्चे से के लाड से प्रेम करती है। तो ऐसे यशोदा मां, वत्सला का मतलब है कि अपने भक्तों में दोष नहीं देखना। जैसे आपका छोटा बच्चा है बोलता है कैसे तोतला, फिर भी आप कहते हैं बोलो, और बोलने से आपको सुख मिलता है तो उसकी वो दोष है, लेकिन उसका दोष भी आपको अच्छा लगता है, उसके दोष में भी आप सुख लेते हो। कभी बच्चे को बोलते हैं आंखें बंद करके दिखाओ, आंखें बंद करने का मतलब अंधा होना है, लेकिन बोलते हैं आंखें बंद करो, तो आंखें कैसे बंद बने, इसे बंद करेगा तो आपको अच्छा लगता है, आंखें बंद करना कौन सी अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को बोलते हैं आंखें बंद करके दिखाओ, बूढ़ा बन के दिखाओ। अब बूढ़ा बनना कोई अच्छी बात है क्या? बूढ़े बच्चे को बोलते हैं, तो बच्चा क्या है, डांडा लकड़ी उठाता है और ऐसे बूढ़े की तरह चल के दिखाता है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसमें भी मजा आता है कि बच्चा बूढ़ा बन के दिखा रहा है। बूढ़ा बनना कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन इसमें भी मजा लेते हैं। तो इसको बोलते हैं, इसको वत्सला कहते हैं, कि दोष न देखे, जिससे प्रेम करते हैं उसमें दोष नहीं देखते हैं, उसके दोष में भी सुख लेते हैं, उसके दोष में भी सुख मिलता है। तो अर्भक वत्सला है, बच्चों से प्रेम करने वाली है, लेकिन लाठी तो फेंक ली, लेकिन मां ने विचार क्या किया, अब तेरे को बांध के रखूंगी। बोला किससे बांधेगी? बोला रस्सी से, दाम से, रस्सी से बांधूंगी, रेशमी रस्सी से भी नहीं, गाहे बछड़े को बांधने वाली रस्सी से बांधूंगी, मूंज की रस्सी से, खंभे में नहीं, कि सोने के खंभे में बांधा भगवान को, ऐसा नहीं है, वो पत्थर के उखल में बांधूंगी। तब सुखदेव गोस्वामी, यहां परीक्षित महाराज कृष्ण के पक्ष में है, ऑन द साइड ऑफ कृष्ण है, पर कृष्ण मैं तो जानता हूं, मेरे जन्म से पहले मेरी मां के उदर में आके मेरी रक्षा की थी, ये तो साक्षात परम ब्रह्म भगवान है, इसको कैसे बांधेगी? परीक्षित महाराज कृष्ण के पक्ष में हो गए कि नहीं बांधना चाहिए, क्यों बांध रही है? और सुखदेव कहते हैं उसने रस्सी हाथ में उठा ली है और बांधने जा रही है। बोला वो तो बच्चा थोड़ी है, उसको बांध रही है, तो बच्चे का, वो तो बच्चा बन के आया है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो भगवान नहीं है। इस दुनिया में आदमी बड़ा बनता है तो खुश होता है, लेकिन आध्यात्मिकता में जब भगवान छोटा होता है तब उसको आनंद आता है। दुनिया में आदमी बड़ा बनने में खुश होता है और भगवान छोटा बनने में खुश होता है, उसको जब कोई अपना छोटा बच्चा बना लेता है तो बड़ा खुश हो जाता है। बड़ा तो पहले से है ही, उसको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है छोटा होने का, तो भगवान तो पहले से ही भगवान है। और यहां एकदम सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये नहीं जानती है, यशोदा नहीं जानती है कि ये भगवान है, इसको कैसे बांधेगी, इतना ही पता नहीं है इसको। तब ये कहते हैं दामना रस्सी से बांधेगी, एतद वीर्य कोविदा, इसकी शक्ति को नहीं जानती है, क्या ये नहीं जानती है यशोदा के पूतना को इसने आम की तरह चूस लिया, उसके प्राण ही निकाल लिए, और ये भी नहीं जानती यशोदा के इसके घर में इतना बड़ा उस शक्तासुर, एक बड़ा छकड़ा था उसके ऊपर दूध के बर्तन रखे थे, उसकी भी लंबाई चौड़ाई लिखी है, उसको छोटे से 3 महीने के थे और पांव लगा दिया पूरा बर्तन नीचे गिर गए, और तिरणावर्त आकाश में ले गया, उसका गला दबा के मार दिया, इसको ये मालूम नहीं है, इसको बांधने जा रही है। तो अब सुखदेव गोस्वामी के मन में ये भाव आया कि ईश्वरता इसकी दुनिया को बता दूं कि है ईश्वर, लेकिन आज यशोदा के प्रेम के कारण बंधा है, लेकिन ईश्वरता इसकी में कोई भेद नहीं है। तब एकदम, लेकिन इसको आचार्य लोग भाव में कहते हैं जो एतद का अ निकाल दो तो यशोदा इसको अच्छी तरह से जानती है। क्या जानती है यशोदा इसके बारे में? नंद बाबा ने कहा कि मैं चप्पल उठा के आया, चप्पल उठते नहीं है, मुंह सारा लाल हो गया है, चप्पल उठा नहीं सकता है, और यहां समझो मेरे से बांधा नहीं जाएगा, मैं इसको जानती हूं क्या करेगा। अरे एक बार तो इसको कहा था कि वो छोटा सा वहां से तोलने का पड़ा उठा के आओ, वहां खड़ा होकर बोलता है नहीं उठता है, मैं इससे 5 पाव भार तो उठता नहीं है, 250 ग्राम उठा नहीं सकता है, इसको बांधने में कौन सा मुश्किल है। यशोदा ऐसे समझ रही है, और सुखदेव कहते हैं ये परब्रह्म परमेश्वर है, दुनिया 3 लोगों का मालिक है। इसके बाद के श्लोक में 2 श्लोकों में बता रही है, न इसका अंदर है न बाहर है, न अंतर के बाहर, ये 2 श्लोक है जो सुखदेव गोस्वामी कहना चाहते हैं, न च अंतर न महर्यस्य न पूर्वम न पिचा परम पूर्वा परम बहिष्य अंतर जगतो ये जगत च यह। अरे भाई बांधोगे तब ना, जब किसी के बाहर से रस्सी घुमाओगे तब ना, अरे इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, और कोई किसी के अंदर में जाएगा तब पकड़ में आएगा ना, ये दुनिया के अंदर भी नहीं है, दुनिया से बाहर भी नहीं है, भाई कहीं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ होगा तो बंधेगा ना, ये तो 4 दिशाओं से दूर है, ये तो जगत भी इसके कारण खड़ा हुआ, तो इसको कैसे बंधेगी? और फिर कैसे बांध रही है? तब सुखदेव गोस्वामी कहते तम मत्वात्मजम, उसको अपना बेटा मानती है। आत्मजम, मैंने जन्म दिया है, मेरा बेटा है, इसलिए बांधती हूं। अरे बेटा किसको मान रही है? अव्यक्तम, जो किसी को दिखाई नहीं देता है, सर्वव्यापक है, उसको बेटा मानती है। कैसा है वो? अधोक्षजम, जो इंद्रियों से कभी जाना नहीं जा सकता है, उसको अपना बेटा मान रही है। अपना बेटा मान रही है किसको? अधोक्षज को, जो इंद्रियों से तो जाना ही नहीं जा सकता है, जो अव्यक्त है। और उसको कैसे बांध रही है? गोपी बांध रही है। कैसे बांध रही है? किससे? उखल से बांध रही है। किससे? रस्सी से बांध रही है। कैसे बांध रही है? प्राकृतम यथा, जैसे साधारण कोई बच्चा हो। अरे ये साक्षात भगवान परब्रह्म, ये परम पुरुष भगवान है, तीनों लोकों का नायक है। हाँ, ये अखंड ब्रह्मांड का नायक है। ये ब्रह्मांड सारे तो इसकी मुट्ठी में ऐसे हैं जैसे किसी की मुट्ठी में धूल के कण हो, उसको ये बांधने जा रही है। लेकिन सुखदेव वो स्वामी, ये परीक्षित का भाव है। तब सुखदेव कहता है वो उसको अपना बच्चा मानती है, वो उसको अपना बच्चा मानती है। आत्मजा, अपना बेटा मानती है, और एक छोटे बेटे की तरह उसको बांधना चाहती है। जैसे संसार के किसी बेटे को, कोई माँ घर में कोई बच्चा शरारत करता है तो उसको जैसे कान पकड़ के मार देती है, ऐसे अपना बेटा समझ के उसको, उसके सामने ऐश्वर्य दिखता ही नहीं है। कभी भी यशोदा ये नहीं समझती है कि ये भगवान है और इसको मैं बांधने जा रहा हूं, ये नहीं समझती है। तो ये दो श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी भगवान परीक्षित महाराज को ये बता रहे हैं, है तो भगवान लेकिन मां ने इसको अपना बेटा मान लिया और वो अपने बेटे की तरह इसको बांधना चाहती है। फिर क्यों बांधती है? छोड़ देना चाहिए। क्या उसने किया है? मटका तो एक तोड़ा है, थोड़ा सा दही गिरा है, ये तो भगवान को क्यों बांधने जा रही है? तो एक शब्द लिखा है दूसरे श्लोक में, स्व अर्भक, अपना बेटा मानती है। स्व अर्भक कृतगस, और ये भी मानती है कि इसने अपराध किया है, अपने बेटे ने अपराध किया है, इसलिए उसको सुधारना चाहती। दूसरे का बेटा अपराध करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना बेटा है, इसने गलती की है, इसको छोड़ दूंगी। पहले ही नंद बाबा ने इसको इतना लाडला बनाया है कि हमेशा गोद में उठा के घूमते हैं। आज थोड़ी देर गोद से नीचे उतरा तो इतना सारा उधम मचा लिया घर में। आज इसको मैं नीचे उतार के बांध के रखूंगी क्योंकि मेरा बेटा है, मैं इसको सुधारना चाहती। किससे बांधेगी? उखल से। अब उखल का नाम लिया तो उखल बोलने लगा, बोला मैंने क्या किया, मेरे को क्यों बांध रही हो? कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ जड़ भी चेतन हो जाता है। उखल बोले मैंने क्या किया, इसको बांधो, अपना बेटा है, मुझे क्यों बांध रही हो, मैं तेरा बेटा थोड़ी हूं। यशोदा ने कहा चोर का साथी भी चोर होता है, तेरे ऊपर चढ़ के चोरी की थी ना, इसके साथ तेरे को भी बांधना पड़ेगा। बोला मैं उखल हूं, मेरे साथ बांधोगी तो और खराब हो जाएगा। बोला इसीलिए तो बांध रही हूं, दो दिन तेरे साथ रहेगा तो इसको पता लगेगा कि तू कितना खराब है, फिर ये काम ऐसा करेगा नहीं कभी। जैसे बच्चा कभी आग की तरफ जाए तो उसका हाथ पकड़ के आग के नजदीक ले जाओ, गर्म लगेगा तो दोबारा कभी नहीं जाएगा। तो मैं इसी के साथ बांधूंगी ताकि दो चार दिन इसके साथ, दो घंटे भी रहेगा ना तेरे साथ, तो इसको पता लगेगा, फिर कभी तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा नहीं और घर में कोई उल्टा काम करेगा नहीं। तो बांध क्यों रही है? बोला अगर नहीं बांधे कोई बात नहीं, यशोदा कह दे छोड़ो जाओ जाओ, टूटा तो कोई बनता, इससे प्रेम तो नहीं दिखता है, जाओ। और कृष्ण कहेगा मैं नहीं बनता हूं, मैं ईश्वर हूं, तो कौन कृष्ण को भक्ति कौन करेगा? अरे भगवान इतना सारा प्रेम कर रही है, मैया दूध पिला रही है, अपनी छाती का हाथों से मक्खन निकाल रही है, और उसकी बात भी नहीं मानता, बोलता मैं ईश्वर हूं। ईश्वर हो तो जाओ मंदिर में रहो, तेरी आरती कर लेंगे, तेरे को भोग लगा लेंगे, तेरे को गोद में थोड़ी बिठाएंगे। तो ये दोनों में प्रेम है, कृष्ण को वात्सल्य रस का प्रेम लेना है और मां को, और ये कृष्ण को ये भी मां को दिखाना है कि मैं तुम्हारा छोटा सा बेटा हूं, तुमसे डरता हूं, और तुम नहीं खिलाओगी तो मैं भूखा मर जाऊंगा। ऐसे कृष्ण ईश्वरता जो अपनी है उसको छुपाना चाहते हैं। तो अब ये श्लोक कहता है, तद दाम बद्य मानस्य माता ने उसको बंधने का संकल्प किया। क्यों बांधना चाहती थी? स्व अर्भक, क्योंकि अपना बेटा था। दूसरे का होता, किसी गली का होता, बर्तन तोड़ भी दिया, जाओ जाओ जाओ, लेकिन अपना बेटा है तो इसको सुधारना मेरा धर्म है। इसको नहीं सुधारूंगी तो फिर मैं मां कैसे बनी कि अपने बेटे की गलती को नहीं सुधारती हूं? मेरे बेटे को तो सुधारना ही चाहिए, इससे शिक्षा क्या मिलती है? प्रभुपाद जी कभी कहते थे 5 साल से छोटे बच्चों को ज्यादा ताड़ना नहीं करनी चाहिए। चाणक्य की नीति से 5 से 15 साल तक बच्चे को अच्छी तरह से सख्ती से रखना चाहिए ताकि उसको डर रहे, और 15 साल के बाद उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके बाद सख्ती करोगे तो भाग जाएगा। तो यहां मात्र जी थोड़ा सा लिखा है अवघुरात, घूर के देख रही है, डराने का प्रयास कर रही है कि गलत काम न करे, लेकिन हृदय से प्रेम करती है, डराना नहीं चाहती है। तो हुआ क्या, उखल में रस्सी बांधी, कन्हैया को रस्सी बांधने लगी तो लिखा द्वय अंगुलम अभूत तेन संददे अन्य च गोपिका। ये गोपी ने एक रस्सी बांधने का प्रयास किया और कन्हैया के अब यहां झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या हो गया? मां ने बोला मैं बांधूंगी और कन्हैया ने बोला मैं नहीं बांधूंगा। तुम बांधना चाहती हो, मैं नहीं बांधूंगा। अब जैसे रस्सी बांधे मैया तो रस्सी यहां पहुंच गए और रस्सी छोटी हो गई 2 इंच। दूसरी रस्सी लाओ, तब तो गोपियां आ गई, दासियां तो कहीं बाहर चली गई थी, काम दूसरे में लगी थी, कुछ गोपियां आई, एक और रस्सी लाओ, एक और रस्सी लाए, रस्सी बांधी, अरे फिर छोटी। तो भगवान की शक्तियों के 2 विभाग हो गए, भगवान की शक्तियों के, एक शुद्ध संकल्प शक्ति, भगवान की जो शुद्ध संकल्प शक्ति है, और विभूति शक्ति है। इन्होंने कहा भगवान को बांधने नहीं देंगे, भगवान कैसे बन सकता है? और दूसरी तरफ भगवान की करुणा शक्ति है। अब भगवान की विभूति शक्ति ने और सत्य संकल्प शक्ति ने, सर्वव्यापकता की शक्ति ने कृष्ण को बांधने नहीं दे रही है। कृष्ण चुप करके खड़ा है, मां बांध रही है, रस्सी के ऊपर रस्सी जोड़ रही है और कृष्ण बंध नहीं रहा। इसलिए अपने श्लोक में लिखा है कि ये लीला कर रहा है, इतिदृक स्व लीला भी आनंद कुंडे, ये लीला कर रहा है। कौन सी लीला कर रहा है? कि रस्सी के ऊपर रस्सी जोड़ी जा रही है और नहीं बंधा जा रहा है, ये लीला है। क्यों कर रहा है लीला? आनंद में डुबाने के लिए। किसको? अपने सघोषम, अपने गोकुलवासियों को, निमंजनतम, बड़ा मजा दे रहा है उनको, आख्यातम, ये पूरी दुनिया में इसका प्रचार होगा। आज भी बैठ के 5000 साल के बाद दुनिया के कोने कोने में ये कथा लोग गाएंगे, आख्यातम। आख्यातम का मतलब इसका प्रचार होगा, इसकी पब्लिसिटी होगी। किसके लिए? दुनिया को दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? प्रेम से बनता है और भक्त से हारता है। भक्तिम जितत्वो, भक्त जीत जाता है और भगवान हार जाता है। प्रेम में भगवान और भक्त के बीच में बहुत बड़ी स्पर्धा चलती है, कंपटीशन चलती है, यानी क्लाइमेक्स के ऊपर जाके भक्त जीत जाता है और भगवान हार जाते हैं। तो यहां लीला हो रही है। क्या लीला हो रही है? भगवान बंधे नहीं जा रहे हैं, नहीं बंधे जा रहे हैं। तो यशोदा ने क्या किया? यदा आसीत तदपि इन्योनम, एक और रसी लाओ, एक और रसी लाओ, तेना अन्यदपि संददे, उसके साथ दूसरी रसी को जोड़ा, फिर बांधा, नहीं बंध रहा है। तदपि द्वि अंगुलम न्यूनम, फिर भी 2 अंगुल कम पड़ा। यद्यदादत बंधनम, जितनी भी रस्सियां मिलाए, और फिर तो लिखा है एवं स्वगेह दामानी यशोदा संदध्यापि, अपने घर की सारी रस्सियां कटी कर ली, बंधन में नहीं आए। कितनी रस्सियां होंगी यशोदा के घर में? बहुत ज्यादा रस्सियां थी, हजारों गाय थी, लाखों गाय थी, इतनी सारी रस्सियां कटी कर दी लेकिन बंध नहीं आए, ये बड़ा आश्चर्य है। तब तो बहुत बूढ़ी बूढ़ी गोपियां चारों ओर से इकट्ठी हो गई। अब गोपियां हंस रही हैं सब, बोला हे राजा, हे नंद रानी, क्यों लाला को बांधना चाह रही है? इसके भाग में बंधन लिखा ही नहीं है, इसके सर के ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद दे दो, बेटा तेरा बंधन नहीं लिखा है, इतनी रस्सियां, इतना परिश्रम, नहीं बंध रहा है ना। वो हंस रही है, गोपियां, यहां लिखा है गोपियां हंस रही है, क्या कर रही है? अन्य गोपी नाम सुसमयंती नाम, बड़ी गोपियां हंस हंस के कह रही, हे नंदरानी छोड़ो, बच्चे को छोड़ो, मत बांधो, विधाता ने इसका बंधन नहीं लिखा है, लेकिन यशोदा मुस्कुराती है, सुमयंती यशोदा मुस्कुरा कर कहती है बांधूंगी बांधूंगी बांधूंगी, शाम हो जाएगी पूरे शहर की रस्सियां लगाऊंगी लेकिन बांधूंगी। लेकिन उसके साथ विस्मित भवत, बड़ा आश्चर्य हो रहा है यशोदा को। आश्चर्य क्या हो रहा है, विस्मिता क्या हो रही है, मुट्ठी जितनी कमर है, रोज इसके अंदर मैं काला धागा नजर से बचने के लिए बांधती हूं, रोज यहां मैं आभूषण बांधती हूं, रोज बंध जाते हैं, इतना तो लंबा कमर है इसका, मोटा न कृष्ण हो रहा है, और रस्सियां मैं इतनी साफ किया है, रस्सी छोटी नहीं हो रही है, ये बंध नहीं रहा, बात क्या है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ मां को, और मां को आश्चर्य हुआ, और जब मां ने कहा कि शाम हो जाए तब भी मैं बांधूंगी, तो मां का यह संकल्प देखा कृष्ण ने, तो कृष्ण ने मां की ओर देखा, और जब कृष्ण मां की ओर देखता है, इसका बाद का श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण ने मां की ओर देखा। तो अब यशोदा बांधने का प्रयास कर रही है, कृष्ण बंध नहीं रहे हैं, और यशोदा का संकल्प दृढ़ देखा, तो भगवान ने यशोदा की ओर देखा, और जैसे ही स्व मातु अपनी माता को देखा, क्या माता को देखा और कृष्ण के हृदय में क्या भाव प्रकट हुए, इसकी चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्ण, श्री राधा दामोदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, नरोत्तम दास ठाकुर की, श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। किसका है, किसका, कौन है, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, फटाफट करो। ओ, ये कृष्णदास बाबा है, आई हरे कृष्ण। ये ठाकुर जी का दामोदर की सीडी, और ये पुस्तक आपके लिए भक्तों की तरफ से, और दामोदर की सेवा।